વેદ સંવત 2492 દ્વિતીય શ્રાવણ સુદ નોમ બુધવાર તારીખ 24/8/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રની ગાથા 6 ભાવાર્થ ઉપર ચોણપુરીમાં પ્રવચન સળંગ વચન નંબર 26
નમો નોય સૌરિયંતાણમ નમો નોય સૌસિદાનમ નમો નોય સૌરિયાણ નમો નોય સૌજાયાણમ નમો નુવિ સૌ ત્રિકાળવતિ શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધમ શ્રી ઓમકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમૌ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમૌ સુમંગળમ નમઃ સુમરિસ્તાય સ્વાનુભૂત્યા ચાસ્તિ સ્વાય ભવાય સર્વા ત્રિભાવનિદાતા
क्या है तो यहाँ चालती भाषा में जयचंद पंडित है उसका खुलासा यहाँ दिया है परमार्थ है इसमें भेद नहीं इसलिए प्रमत प्रमत नहीं क्या लगाया है जैसे ठीक बाबा क्या क्या समझ में आया आत्मा विनायक स्वरूप ध्रुव निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ वो एक ही चीज है उसकी दृष्टि में वर्तमान पर्याय गौण करके अभूतार कहकर असत्यार्थ कहकर कहने में आया समझ में आया भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य ध्रुव अनंत गुण की एक रूप चीज कोई सम्यक दर्शन का विषय है समझ में आया उसको यहाँ भूतार्थ कहा है भूतार्थ नाम छतो पदार्थ छतो शब्द कहते हैं विद्यमान छतो शब्द नहीं हलते पंडित जी छतो शब्द नहीं हलते हिंदी में नहीं हलते विद्यमान छता शब्द छतो इतने है परिपूर्ण इनाय भूतार्थ भूत 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 विद्यमान अर्थ त्रिकाल कोई निश्चय नहीं का विषय उसको सत्यार्थ कहने में आया है पर्याय वो कहते हैं देखो एक बात हूँ हमें ज्ञायक नाम भी उसे नहीं को जानने से दिया जाता है क्या से शुरू है भगवान आत्मा जानने वाला है वो ज्ञेय को जानने से नाम दिया जाता है क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तो व्यवहार से समझा जाए हो ज्ञेय का प्रतिबिंब के ज्ञान में पड़ते नहीं पर ज्ञान की पर्याय में जैसा ज्ञेय है ऐसा स्वज्ञान आकार अपनी पर्याय में ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं तब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है जैसा राग आया विकल्प है तो उस संबंधी अपना ज्ञान ज्ञानाकार होकर अपने को ज्ञान रूप जनाते हैं राग रूप नहीं व्यवहार रूप नहीं भाई सूक्ष्म गाथा
छ्ञेय
आया नहीं अपनी ज्ञान की पर्याय ज्ञेय संबंध का अपना जो पर प्रकाश का भाव था वो अपने में आया अपने से पर कैसे आया ये नहीं समझ में आया तो कहते हैं ज्ञान में वैसा अनुभव होता है क्या जैसा पुण्य पाप का भाव दया दान का राग आया तो उस संबंधी का अपना ज्ञान अपने में से ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान अपने आकार रूप हुआ है ज्ञेयाकार रूप हुआ नहीं तथापि उसे ज्ञेयकृत सूत्रा नहीं चाहे सो ज्ञेय का ज्ञान यह हुआ वो ज्ञान अपना है तो वो ज्ञान हुआ ज्ञेय का तो उससे कारण अशुद्धता आ गई ऐसा है नहीं ये तो अपना न्यायिक ही अपने से अपने को जाना और राग को भी अपने में अपने अस्तित्व में अपना सामर्थ्य से राग को व्यवहार को जाना तो वो पर की अशुद्धता पर के कारण से अशुद्धता आई ऐसा है नहीं समझ में आया लालचंद जी सूक्ष्म विषय है गाथा वो आ गई सहजी आ गई हो चलते चलते 11 शुरू हुआ है श्रावण शुद्ध 11 पहली श्रावण शुद्ध करो समय सा शुरू आ 15वीं बार शुरू आए सभा में। तो कहते हैं कि ज्ञेयकृत सूत्र नहीं, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासन हुआ, जैसा ज्ञेय राग आदि ज्ञान में भाषण हुआ, वैसा ज्ञायक के अनुभव करने पर, जानने वाला मैं हूं ऐसा अनुभव करने पर ज्ञायक है, वो ज्ञायक के राग रूप हुआ नहीं, व्यवहार रूपे हुआ नहीं, निश्चय रूप अपने अपने को जानकर पर रूप जानने का पर्याय रूप रहकर ज्ञाय की रहा है, पर रूप हुआ बहुत सूक्ष्म। पची यह जो मैं जानने वाला हूं, अभेद करते हैं, अब जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब उस जाने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं है। अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, शुद्ध चैतन्य ध्रुव ऊपर लक्ष्य करके अभेद का अनुभव पर्याय में हुआ, तो कहते हैं अपने को अपना अभेद रूप हुआ तब जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं, जानने की क्रिया का भैया क्रिया लिया, जानने की क्रिया, पर जानने की क्रिया हुई उसका कर्ता ज्ञायक, ऐसा अपने, और जिसने जाना, जिसने जाना गिनाए के जाना, गिनाए भी कर्म हुआ, सूक्ष्म बात है, जानने वाला भी कर्ता और जनाया वो भी आत्मा, वो भी कर्म, सूक्ष्म है, तीसरी चीज है अभेद हो गया, अभेद, हाँ जिसको जी शब्द फेरे 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 ख्याल है, मैं अर्थ दूसरा कर दिया ना, जिसने अर्थ जिसको जो फिर शब्द में, मैं तो अर्थ ऐसा कर दिया ना, जिसको कर दिया था अर्थ शब्द में, जिसने है जिसने न जोइए, जिसको जाना वो कर्म भी स्वयं, ऐसा शब्द होना चाहिए, समझ में आया, अर्थ में ऐसा कहा था कोई लेकर, जिसको नाम आत्मा को, आत्मा ज्ञायक स्वरूप चिदान अवेद, वो जानने वाला वो ही जनाया, जानने वाला भी हो और जानने में आया हो वो हो, उसका नाम अवेद कहते हैं, समझ में आया, सूक्ष्म विषय भाई, ऐसा ही ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, ऐसा भगवान ज्ञायकत्व स्वभाव मात्र ही शुद्ध है, यह शुद्ध नहीं का विषय है, ये शुद्ध नहीं का विषय है, अर्थात सम्यक दर्शन का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है, अपनी पर्याय में प्रमत अप्रमत आदि भेद है, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं के विषय, क्या कहते देखो, भगवान आत्मा अपना ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध ध्रुव उसकी दृष्टि करने से ज्ञायक भी आत्मा, जानाया वो भी आत्मा, वे कहते हैं जितनी पर्याय में भेद पड़ते हैं अवस्था में, ये सब अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं के विषय है। भाषा देखो, आत्मा में 14 गुण स्थान राग आदि भाव प्रमतम प्रमत भाव, वो संयोग जनित भेद का विषय, व्यवहार नहीं का विषय, तो पहले अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कहा भाई, क्यों कहा कि द्रव्य की उसकी पर्याय है तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक पहले कहा, क्या क्या समझ में आया, पहले अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों कहा, नहीं तो है तो व्यवहार नहीं का विषय हो, नायक जो एक स्वरूप त्रिकाल है शुद्ध ध्रुव, वो शुद्ध नहीं का विषय और उसका आश्रय करने से ही सम्यक दर्शन होता है, और वो विनायक में जितना वर्तमान पर्याय में भेद दिखते हैं, गुणस्थान राग आदि भेद, इस संयोग जनित भेद, ये सब भेद रूप अशुद्ध व्यर्थ के विषय क्यों लिया, कि वो द्रव्य तो अपना एक रूप है, कोई द्रव्य पर्याय में अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय में अपने कारण से भेद रूप हुआ है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी का विषय कहने में आया, સમજ ના આવ્યા કે નહીં? ખેર આપણે પુનર્યુક્તિ લગતી નહીં. અન્ન જો પર સંયોગ જનિત ભેદ હૈ, ભગવાન ચૈતન્ય પ્રભુ વિનાયક સ્વરૂપ કોઈ દ્રષ્ટિ કા વિષય કોઈ અભેદ, તો ઉસકી પર્યાય મેં ભેદ દિખતે હૈ ને? ચોથા ગુણસ્થાન, પંચમ ગુણસ્થાન, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન, રાગ આદિ પ્રમત પ્રમત ભેદ દિખતે હૈ ને? કે ભેદ ખરેખર તો સંયોગ કા લક્ષ્ય, સંયોગ કા નિમિત્ત મેં ભેદ પડ જાતે અપને મેં, કે અપને પડતા હૈ વો બતાને કો સબ ભેદ રૂપ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થી નહીં કા વિષય બતાયા. વો દ્રવ્ય હી અપની પર્યાય મેં અશુદ્ધપણે ભેદ રૂપે હુઆ. પુસ્તક હૈ કે નહીં સાથ પાસ મેં? વો કારણ તો પુસ્તક કહેતે હૈ કે આ ક્યા શબ્દ કા ક્યા અર્થ હૈ. સમજ મેં આયા? લોકો ટીકા તો કરતે હૈ કે નીચે પુસ્તક, ભાઈ ભગવાન સુન તો સહી ભાઈ. અરે પ્રભુ, તેરે ક્યા ચીજ હૈ વો સમજને કા, શબ્દ મેં સે ક્યા વાચ હૈ વો વાચ કહેને ને સમજ મેં આવે તો શાસ્ત્ર કા વિનય કહેને મેં આયા હૈ, વો ખરા વિનય હૈ. સમજ મેં આયા? કહેતે હૈ ભગવાન આત્મા સંગત દર્શન અથવા શુદ્ધ નયિકા વિષય અભેદ એક રૂપ એકાગ્ર હોતે હૈ, એક રૂપ જિસકા વિષય જે હૈ. ત્યારે કહેતે હૈ કે આ પર્યાય ભેદ દિખતે હૈ ને, ઉસકી દશા મેં સંયોગ જનિત, સંયોગ કે લક્ષ્ય હોને વાલા ઉસમે દિખતે હૈ ને, તો સંયોગ જનિત ભેદ એસે કહેકર સબ ભેદ અશુદ્ધ રહ્યાથી કેસે કહે દિયા? સંયોગ કર્મ કા નિમિત કા સંગ મેં જો ભેદ પડ જાતે હૈ અપના પુરુષાર્થ હૈ, અપની દ્રવ્ય કી અપની પર્યાય મેં, તો ઉસકો અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થી વિષય કહા. અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થી જયચંદ પંડિત હૈ, બડી હિન્દી મેં ચાલતી ભાષા મેં પણ વાસ્તવિક મુક્યા હૈ. લોકો એસે ન સમજી જાય તો આત્મા કી પર્યાય મેં વો પર્યાય પરસે હુઈ હૈ, પરસે હુઈ હૈ અથવા પરમે હૈ, એસે સમજ ન જાય. એસે નહીં હૈ, ભગવાન આત્મા જ્ઞાય ચિદાનંદ પ્રભુ વો દ્રવ કા શુદ્ધ કા વિષય હોત પણ, અને આત્મા કી ઉપાસના કરને સે વો શુદ્ધ કહા, તો પર્યાય મેં ભેદ હૈ ને? ગુણસ્થાન હૈ, રાગ હૈ, દયાદાન કામ કરો વિકલ્પ આદિ હૈ, અશુદ્ધતા હૈ, જ્ઞાન ગુણ આદિ કી પર્યાય હીણી હૈ, વીર્યહીણા હૈ, રાગ આદિ વિપરીત હૈ, વીર દર્શન હીણા હૈ, વો ક્યા હૈ? વો ભેદ સંયોગ કા લક્ષ્ય, સંયોગ જનિત શબ્દ પર આયે, સ્વભાવ જનિત નહીં વો બતાને કો બાત હૈ. આ જનિત કા કહ્યા ને, સ્વભાવ જનિત નહીં, વો અપેક્ષા છે સંયોગ જનિત કા, વો સંયોગ જનિત કહેકર સ્પષ્ટ કરતે હૈ કે વો સબ અશુદ્ધ દ્રવ્યાદિ કા વિષય હૈ. વો દ્રવ હી અપની પર્યાય મેં અશુદ્ધપણે પરિણમા હૈ, વો માટે ખુલાસા કિયા. સમજ મેં આયા? સંયોગ જનિત જો શબ્દ પડા હૈ વો સ્વભાવ જનિત નહીં, ઇતના કહેને કો. ઓર સંયોગ જનિત કા અર્થ સંયોગ કા લક્ષ્ય હૈ, ઉસકા આશ્રય સે ભેદ પડતે હૈ ગુણ સ્થાન કા, ચૌદ ચોથા પાંચમા છઠ્ઠા સબ ભેદ હૈ, તો વો ભેદ અથવા રાગ આદિ હૈ, ભેદ હૈ. કે સબ ભેદ રૂપ, દેખો કે સબ ભેદ રૂપ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થના વિષય હૈ, વો દ્રવ હી અપની પર્યાય મેં અશુદ્ધપણે પ્રણમા હૈ. સમજ મેં આયા? અશુદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન હોય, અપને મેં ઉત્પન્ન હોય, બતાને કો કહા. અપને મેં, અપને સે દ્રવ્ય શુદ્ધ હૈ, પર્યાય કો અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થી નહીં કો કહા, કે દ્રવ્ય અપની પર્યાય મેં ભેદરૂપ પ્રણમા હૈ. સમજ મેં આયા? અમરચંદજી, ભગવાન વો પર્યાય હૈ નહીં હૈ? નહીં, પર્યાય હૈ, ભેદ હૈ, ગુણસ્થાન ભેદ હૈ. જો ભેદ ન હોય તો તીર્થ કા નાશ હો. તીર્થ ભી ચોથી પાંચમી છઠ્ઠે શુદ્ધિ વધે ઘટે સબ વ્યવહાર કા વિષય હૈ. નાયક કા તો એક વિષય હૈ, શુદ્ધ નયિકા દ્રષ્ટિ કા તો એક અભેદ અખંડાનંદ નાયક વિષય હૈ. ઉસકી સાથ ભેદ वेद है गुणस्थान का, ये अशुद्रार्थिक है, ये द्रवी अशुद्ध पड़े हुआ है, नहीं के कर्म से अशुद्ध पड़ा हुआ है, वो बताने को सब वेद रूप अशुद्रार्थी नहीं का विषय है। समझ में आया? वो हम जैसे कि नहीं आना, आमा हम जैसे क्या कहवाई थे मायन राजमल जी, अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं भी, हमें खुलासा किया, देखो अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं भी वर्तमान में जितना भेद पड़ते हैं दया दान व्रत विकल्प के गुणस्थान भेद, इस शुद्ध द्रव की दृष्टि में, शुद्ध द्रव की दृष्टि में परियार्थिक ही है, ये परियार्थिक ही है। समझ में आया? हाँ, तो मर्म की बात है, मूल चीज की बात है, कोई उड़ा दे कि भेद है ही नहीं तो प्रमाण का विषय पूरा नहीं होता। समझ में आया? और द्रव्य का विषय अभेद है, जो उसका लक्षण न करे तो न्याय से अपनी तत्व से जो दृष्टि उत्पन्न होनी है होती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं भी, इसलिए अर्थात कि द्रव्य में अपना द्रव्य की पर्याय में विनाय तो द्रव्य शुद्धि है, दृष्टि तो हो ही, पर्याय में भेद रहते हैं, रागवेश उत्पन्न होता है, नुकसान भेद होता है, और उसको अशुद्ध द्रव्यार्थी क्यों? कि वो अपना द्रव्य अपने से अशुद्ध पने हुआ संयोग जनित के लक्ष्य है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। वो अशुद्ध द्रव्यार्थी भी शुद्ध दृष्टि की अपेक्षा से परियार्थिक है, परियार्थिक ही है। सरतन जी जीनी क्या, तो बरस सादी भाषा आके कोई शास्त्रीय संस्कृत व्याकरण की ऐसे कोई नहीं हमारी पास होता, हाँ तो सादी सहली भाषा से है बात है कि आत्मा एक समय में उतार सत्यार त्रिकाल जो कहा वो तो दृष्टि का विषय, इस शुद्ध नहीं का विषय, तो कहीं बाकी रहे कि नहीं उसमें, इतना ही आत्मा। समझ में आया? तो कहते हैं कि पर्याय में, अवस्था में, हालत में, दशा में, चारित्र बोले संयोग का लक्ष्य है, जो भेद पड़ते हैं स्वभाव के लक्ष्य भेद क्यों पड़े हैं? हाँ, तो संयोग के जनित कहने में आया, स्वभाव जनित नहीं, संयोग से जनित उत्पन्न हुआ, उससे निमित्त का लक्ष्य कर से भेद पड़ गया, गुणस्थान का, दया दान का, व्यवहार रत्न त्रिक आदि, इस साल अशुद्ध व्यार्थिक है, अपनी पर्याय प्रणमी है, माटी अशुद्ध व्यार्थिक है, वो अशुद्ध व्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, विकार न्याय की दृष्टि में परियार्थिक ही है, पर्याय ही है, अशुद्ध व्यार्थिक को पर्याय ही है। वो तो अशुद्ध व्यार्थिक क्यों कहा था कि द्रव्य अपनी पर्याय में अपने से अशुद्ध हुआ है, ओकार से अशुद्ध द्रव्यार्थी कहने में आया है। मंत्र नहीं, यानी प्रश्न के लिए तो ना संयोग जनित सब सब चौदह गुणस्थान तो भेद पड़ते आत्मा मत पर्याय दृष्टि का विषय है भैया। समझ में आया? हाँ, तो मूल मुद्दा की रकम है ना, जरी शुरुआत आंसर होती है। तो कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं पर भगवान तुमको कहते हैं, और अभी तो संबोधन करके प्रभु तेरी रुद्धि कैसी है, सुन तो सही, तेरी रुद्धि तो अंदर एक रूप खंडानंद प्रभु है, वो तेरा द्रव का शुद्ध नहीं का विषय ने सम्यक दर्शन का विषय है, पर क्या इतना में आ गया सारा द्रव आ गया कि नहीं? वो तो कहें तो नहीं है, तो नहीं एक अंश को पकड़ते हैं, मैंने शुद्ध नहीं हो कि शुद्ध दृष्टि पर नहीं है ना, तो नहीं तो एक अंश को पकड़ा, त्रिकाल ध्रुव अंश को पकड़ा है, ये दूसरा अंश रहता है कि नहीं है ब्रह्मचारी जी, दूसरा अंश रहता है कि नहीं, क्यों प्रमाण है वो नहीं, नहीं है, नहीं एक अंश को पकड़ते हैं, तो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि एक अंश ध्रुव भेद को पकड़ा है, तो एक अंश आया तो दूसरा अंश है कि नहीं? समझ में आया? दूसरा अंश है जो व्यवहार नहीं का विषय है, वो तो यहाँ द्रव्य अपने से अशुद्ध परिणाम है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी का विषय कहने में आया, और उसको स्पष्टीकरण करके जब शुद्ध द्रव्य को शुद्ध नहीं का विषय कहा तो आत्म रहेगी पर्याय अशुद्ध, तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थी भी पर्याय ने राग आदि तो व्यवहार नहीं का विषय है ही, पर अशुद्ध द्रव्यार्थी जो पर्याय अपनी प्रणी अपेक्षा है हम अशुद्ध कहा, वो भी शुद्ध द्रव की दृष्टि में त्रिकाल नायक की दृष्टि में पर्यायार्थी की है, वर्तमान अवस्था ही है। समझ में आया? इसने व्यवहार नहीं है, तीन बोल ले लिया। देखो अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा, उसको प्रियार्थी कहा, उसको व्यवहार कहा, तीन अपेक्षा आ गई। क्या ही तीन अपेक्षा? एक तो त्रिकाल ज्ञायक चैतन्य को पकड़ा, एक अंश को शुद्ध को ध्रुव को न्याय को, तो ये शुद्ध नहीं का विषय हुआ, तो हमें एक अंश बाकी है कि नहीं भेद का, तो भेद उसका उसमें है वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा, कि अशुद्ध द्रव्यार्थी को वर्तमान अंश है तो उसको पर्यार्थी कहा, वो अंश त्रिकाल का भेद का भेद है उसको व्यवहार कहा। समझ में आया? इसलिए व्यवहार नहीं, ऐसा आशय समझना चाहिए, ऐसा आशय अभिप्राय समझना चाहिए। समझ में आया? यहाँ यह भी जानना चाहिए, हर विशेष को तो खुलासा करते हैं कि जिनमत का कथन साधुवाद रूप है, द्रव को शुद्ध नहीं का विषय बनाया तो अशुद्ध उसमें है ही नहीं, ऐसे नहीं, साधुवाद का है, इसलिए अशुद्ध नहीं को सर्वथा अशुद्ध न माना जाए। क्या कहते हैं कि भाई ध्रुव उसको भूतार कहा, न्यायक त्रिकाल को सत्यार्थ कहा, भूतार्थ कहा, परमार्थ कहा, तो पर्याय को अशुद्ध को अभूतार्थम असत्यार्थ है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। असत्यार्थ कहा था त्रिकाल ज्ञाय की अपेक्षा से, दृष्टि का विषय में भूतार्थ है वो अपेक्षा से पर्याय को अशुद्धता को असत्यार्थ कहा, अभूतार्थ कहा और परमार्थ कहा, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि है ही नहीं। समझ में आया? न समझाई तो रात्रि को पूछना, क्यों हम तो चलते हैं ना, रात्रि को पूछना बरत प्रत्येक वक्त बात, कोई छोड़ना नहीं, छेड़ना छेड़ना अंदर में क्या क्या है, क्यों डालजन जी छोड़ना नहीं, कोई बात छोड़ना नहीं, सबका स्पष्टीकरण होना होना। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा उसको शुद्ध कहा, अभेद कहा, तो अशुद्ध नहीं का विषय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, पहले ही कहा था व्यवहार भूजो अगलाएगा, व्यवहार अभूतार्थ है, अभी आ गया है यहाँ में माफी आ गया नहीं, अशुद्धाधर गौण है व्यवहार अभूतार असत्यार्थ है, तो भगवान आत्मा में राग आदि गुणस्थान भेद ही असत्यार्थ कहा, ये असत्यार्थ सर्वथा नहीं मानना, और त्रिकाल की अपेक्षा असत्यार्थ कहा है। समझ में आया? समझ में आया? असत नई को अशुद्ध नई को वर्तमान में अशुद्धता अपनी पर्याय में मैल है, राग है, भेद है, सर्वथा झूठा न मानना, क्योंकि साधवाद प्रमाण से है, साधवाद प्रमाण से है, शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। क्या किया? जैसा त्रिकाल शुद्ध के वस्तु का धर्म है, ऐसी अशुद्धता भी वस्तु का धर्म है, वस्तु का पर्याय में धर्म उसका है, कर्म का धर्म नहीं।
बराबर।
समझ में आया? कहते हैं साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, जैसे विनायक अभेद सच्चिदानंद प्रभु जैसा वस्तु का धर्म है ऐसा ही अशुद्धता वस्तु का धर्म है। वो सामान्य अंश है, इतना फेर है तो दो ही वस्तु का धर्म, दो ही वस्तु ये दाया है। धर्म क्या कहते हैं? अभेद और राग आदि भेद, ये वस्तु ये धारण किया है, वस्तु में धारण है, वस्तु में है, कर्म के काम से नहीं, कर्म में नहीं। समझ में आया तारचंद जी? जयचंद पंडित कितना स्पष्ट करते हैं, क्या कहते? देखो साधवाद प्रमाण से प्रमाण लेना है, एक लो अभेद ही तो अंश है ना, आप पर्याय नहीं है तो साधवाद कथनचित अपेक्षा या भेद को सत्यार्थ कहा और भेद को असत्यार्थ कहा। तो साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, अने वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। भाषा देखो जो इतना स्पष्ट करते हैं कि वस्तु का जो टिकाव ज्ञायक है जो वो भी वस्तु का सत्व है, सत का सत्व है, सत का सत्व है, ऐसी अशुद्धता भी वो सत का ही सत्व है। समझ में आया? आगा था बदा बच्चे तो आते रहना बन जाए, नहीं तो कोई वक्त कोई हो कोई वक्त न हो, हाँ तो शब्द नहीं बीच में गाथा ही हो सूत्र कहे। समझ में आया? हाँ तो बधा साथ में इतना 800 मानस आ गई, क्या है उसका अर्थ समझना चाहिए कि नहीं? दृष्टि का विषय में असत्यार व्यवहार को कह दिया तो सर्वथा असत्यार नियम नहीं मानना, क्यों? कि वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, अशुद्धता मलिनता राजवेशता भेद ये वस्तु का सत्व है, वस्तु में है, वस्तु का धर्म है, वस्तु ये धारी राख्या है। इस कर्मे धारी राख्या अशुद्धता ऐसी नहीं, कर्म का धर्म अशुद्धता कर्म का धर्म है ऐसा नहीं। समझ में आया? शुद्धता अशुद्धता वस्तु का धर्म है, साधवाद प्रमाण से दो ही वस्तु का धर्म है, वस्तु का धर्म वस्तु का सत्व है, वस्तु का धर्म वस्तु का सत्व है। जैसे अभेद एकाकार सम्यक दर्शन का विषय वस्तु का सत्व है, ऐसी अशुद्धता मलिनता विकार का मिथ्या राग आदि भाव वस्तु का धर्म है, वस्तु का सत्व है। नहीं विवाह शक्ति का ही बात है, विवाह शब्द तो टिकाव है तो सिद्ध में भी है वो, यहाँ बात करनी विवाह शक्ति पर के अधीन हुई है वो पर्याय की बात है, नहीं वो पर्याय की बात है, विवाह शक्ति तो टिकाव है, वो विवाह शक्ति टिकाव हो तो सिद्ध में भी है, पर विवाह शक्ति अपने से कर्म का निमित्त के लक्ष्य भेद रूप जी हुई है, ये अपना धर्म पर्याय धर्म है, अब पर्याय धर्म की बात चलती है। विवाह शक्ति तो गुण त्रिकाव है, समझ में आया? विवाह तो त्रिकाव गुण है, वो गुण निमित्त का लक्ष्य है, विकार रूप हुआ, मैं दूसरा गुण भी साथ में विकार रूप हुआ ना, इतनी विवाह में क्या श्रद्धा चारित्र आनंद वो सब विकार रूप हुआ है पर्याय में, ये वस्तु का सत्व है, ये वस्तु का पर्याय का अवस्था का सत्व है। समझ में आया? अंतर मात्र इतना ही है। अब देखो भगवान आत्मा न्यायिक स्वरूप अभेद, जो अंतर एकाकार होकर शुद्धता की सेवन करने से जो शुद्ध लक्ष्य में आया वो ही तो एक सत्व है, पर शुद्धता जो प्रकट हुई और पर्याय में भेद आदि है, ये भेद है ना, शुद्धता भी भेद है। समझ में आया? तो भेद और अशुद्धता, वो भेद भी अशुद्धता में कहते हैं, ये वस्तु का धर्म है, अने वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, अपना सत्व है, कर्म का सत्व नहीं, पुण्य ने पाप दया ने दान मिथ्यात ने अज्ञान राग ने द्वेष, ये वस्तु का सत्व है, वस्तु की पर्याय का सत्व है, ये सत का सत्व है। सात का एक सत्व भेद, एक दूसरा सत्व भेद, एक सत्व शुद्ध एक सत्व अशुद्ध। समझ में आया? तो कहते हैं कि अंतरमात्र इतना कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। आप देखते हो अशुद्धता स्वद्रव्य का आश्रय से होती नहीं, पर का लक्ष्य है पंडित जी पर संगीय भाव अपने पंडित जी कहे ना कि परेव नहीं, नहीं पर हम तो पहले से कहते हैं परेव नहीं पर संगे वो पंडित जी भी कहा परसंगे वो परसे नहीं। यहाँ 200 में गाथा में ऐसा अर्थ है, बहुत गड़बड़ कर तो उसमें बहुत गड़बड़ी होगी ना अभी पर द्रव्य के कारण से आत्मा विकार होता है भैया देखो ऐसे नहीं। वो छोटी गाथा है ना 200 स्फटिकमणि, स्फटिकमणि जैसे है अपने से स्वच्छ है तो अपने से लाल नहीं होता, पद्रव से लाल होता है। ऐसा पाठ है क्या उसका अर्थ क्या कि अपनी पर्याय में सफेद छोड़कर लाल आदि की जाय होती है वो परद्रव के संग से होती है, ऐसे होती अपने में। ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य स्फटिक रतन जैसा निर्मल आनंद प्रभु वो दृष्टि का विषय स्फटिक है शुद्ध चैतन्य, पर पर्याय में राग द्वेष विकार आदि होता है प्रसंग परना संग करने से अपनी पर्याय का सत्व में अशुद्धता उत्पन्न होती है। इतना फेर है कि अशुद्धता स्वसंग से उत्पन्न हुई नहीं है? है? ना संग दोष नहीं, दोष तो इसका ही है। आए तो पर का संग चैतन का संग करे तो शुद्ध उत्पन्न हो जाए, पर परिलक्ष है पर का, पर का लक्ष्य से देखो इतना फिर क्या ने वस्तु का सत्व तो दो ही है, शुद्ध भी सत्व है अशुद्ध भी सत्व है, सामान्य भी सत्व है विशेष भी सत्व है, ध्रुव भी सत्व है उत्पाद भी सत्व का ही सत्व है, और सत्य धारण किया है अपना सत्य धारण के परे नहीं। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयुक्त से होती है, बस इतना परद्रव्य का लक्ष्य से आश्रय से उत्पन्न होती है। अशुद्ध नहीं को यहाँ ये कहा है कि पर का संग से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष पुंपा व्यवहार ये कहा, क्यों अशुद्ध नहीं का विषय संसार है, वो विकार संसार है, अशुद्ध नहीं का विषय संसार है। पुण्य पाप काम क्रोध दया दान विकल्प जो है वो अशुद्ध नहीं का विषय वो संसार है, वो ही संसार है, उससे संसार की उत्पत्ति होती है। संसरणम इति संसार प्रव संसार में पाते भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप में से हटकर संसरण कर खसकर विकार करते हैं वही संसार है। समझ में आया? अशुद्ध नहीं का भी संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगता है, विकारी भाव अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार तो क्लेश है, संसार शब्द है विकारी भाव, बाइली छोकरा संसार नहीं, बाइली छोकरा पर द्रव्य है उसमें अपना संसार कैसे आया, अपनी पर्याय ना संसार परने का आया, अपनी पर्याय में जो अज्ञान से राग द्वेष भ्रम और मिथ्यात करते हैं वही संसार है। अपनी दोष की दशा अपनी पर्याय में रहती है कि दोष की दशा पर में रहती है? बैरी छोकरा संसार है, शरीर संसार है, बंगला संसार है, धूड़ मोटी 5 लाख 2 लाख का बंगला करते हैं, शरीर संसार है धूड़ है तो हाँ संसार हो तो देश छूटने से तो पड़िया रहते हैं सब, तो संसार पड़िया या मुक्ति हो जाएगी ज्यादा मन जाए मूड हो जाए कि जा शरीर स्त्री कुटुंब मकान आबरू कीर्ति जेवरा जेवर कपड़ा वो जो संसार हो देश छूटने का क्या सब छूट जाता है, तो उसका अर्थ क्या संसार छूट गया उसकी मुक्ति होनी चाहिए, ये संसार नहीं। समझ में आया? उसकी पर्याय में मिथ्यात ने राज भाव वो संसार है, उदय भाव वो संसार है। हाँ हाँ हाँ, है अपना नहीं, है अपने में वो संसार है। समझ में आया? पर लक्ष्य से किया किसने?
अपने,
बस अपने बात हो रही है। समझ में आया? अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगते हैं, विकार 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 विकार। निगोद से मानकर नवमी गृहित गई जैन दिगंबर मिथ्या दशाद, उन पर आपका भाव तो संसार है। शुक्लिशा किया नवमी गृह गई मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, आत्म ज्ञान बिन ले सुखना। तो वो भी संसार था, इस द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि का बाय से स्त्री कुटुंब कुछ नहीं, छह भी मुर्गुन चोखा पाले, पर उसमें मिथ्या और राग मेरे क्रिया है, राग पर दृष्टि है, राग जो भाव है वही संसार है।
बराबर।
हाँ, समझ में आया? वो संसार छोड़ा नहीं उसने, बाहर से तो छोड़ गया, राजा और रानी छोड़कर राजकुमार बाल ब्रह्मचारी हो तो उसमें क्या आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद का अवलंबन लेकर अशुद्ध का व्यय करना चाहिए, एंड लेकिन अशुद्ध का आदर किया। स्वभाव का आदर नहीं, अशुद्ध आदर है। अशुद्ध आदर वही मिथ्यात्म है, वही संसार है। समझ में आया? आए संसार अपना संसार पर न रहे। एक दृष्टांत दिया है भाई बोले मतलब अरीसा मंदिर से ना, अरीसा मंदिर तो लिया मैं लिया मैं उस मंदिर से, अरीसा में मैल दिखे, मैल समझा शरीर का मैल दाग लग जाता है, तो यहाँ क्या दिखे? यहाँ घसी जाए अरीसा तो क्या घसाता है, मैल तो यहाँ है। समझ में आया? ए भाई नहीं छोकरा, संसार दुकान वुकान छोड़ दो, ये पड़ी तो पर चीज है, उसमें क्या आया? तेरा संसार का दाग तो तेरी पर्याय में है। दाग समझे? दाग कहते हैं दाग हो मेलो, दाग कहते हैं दाग, तो दाग यहाँ कल दाखला क्या हो दाग हो ये हुई अरीसा घस जाएगा, ऐसे बाड़ी छोड़ छोकरा छोड़ ऐसा छोड़ ढूंढ छोड़ ये तो क्या तेरे काल चला जाएगा, वो संसार नहीं। शरीर नहीं जीर्ण बनाओ, उपास कर कर करके पतला बना जाओ, शरीर तो पतला है उसमें तेरे संसार क्या डट गया? समझ में आया? राग को अपना मानना और स्वभाव को दृष्टि से छोड़ देना, उसका नाम मिथ्यात्म, उसका नाम संसार। मुख्य संसार मिथ्या तो है, राग वे संसार गौण है। तो जो राग मिथ्यात है, एक राग को अपना मानना अथवा एक अंश जितनी वर्तमान व्यक्तता है, ज्ञान की व्यक्तता सूक्ष्म, दर्शन की व्यक्तता सूक्ष्म, वीरी की व्यक्तता सूक्ष्म, राग की विपरीतता उदय, इतना मैं हूँ वो पर दृष्टि है, वो मिथ्यात है, वो संसार है। समझ में आया? अरे सूक्ष्म भाई, समझ में आया भैया? पंडित जी पंडित समझ में आते हैं? हाँ नोट कर लिया, बराबर अच्छा है। क्या कहते हैं, इतना खुलासा किया है भैया, अशुद्धता और शुद्धता तो आत्मा का ही दो कर्म है, आत्मा ही धारण किया है, अशुद्धता कोई दूसरे धारण के ऐसा नहीं, तो वस्तु का दो ही धर्म है, तो उसमें अंतर कितना कि अशुद्धता पर संग से उत्पन्न हुई है वो संसार है, विकार है, अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगते हैं। ये राग ने किन विकल्प को अपना मानकर अपना अस्तित्व में है, पर इतना मैं हूं मानकर संसार है, क्लेश है, चार गति में वो कारण से दुख भोगते हैं। निबोध में भी ऐसा कहा, समझे भाव कलंग पहुरा सोमठा में पास है निगो क्यों रहा क्या भाव कलंग पहुरा भाव कलंग प्रचु ऐसे कहा है कर्म फर्म नहीं कर्म तो पर चीज है निगोद का संसार निगोद का जीव तो द्रव्य शुद्ध है वो तो शुद्ध नहीं का विषय तो उसकी खबर नहीं उसको पर पर्याय में भाव कलंग पौरा भाव कलंग प्रचुर जो मिथ्यात्न है राग द्वेष है कोई उसका संसार है समझ में आया ओ कारण से वो क्या दुख भोगते हैं कर्म के कारण से नहीं क्या क्या देखो अशुद्ध नहीं का विषय संसार अशुद्ध नहीं विषय कहां रहा अशुद्ध नहीं का विषय कहां रहा कर्म में रहा अपनी पर्याय में राग द्वेष भ्रमणा और अशुद्ध नहीं का विषय अशुद्ध नहीं का विषय त्रिकाल अशुद्ध नहीं का अपने में पर्याय का विषय बताना है अशुद्ध नहीं का विषय संसार और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है देखो पर का संग लक्ष्य छोड़कर तब संसार छूटता है देखो आया ना क्या आया स्वयं पर भिन्न होता है तब संसार छूटता है परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर आया ना छठ पहले ही उसमें परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर ऐसा आया कि नहीं उसमें छठी चलते हैं ना नो शिव माना क्या आया उपासित देखो ये समस्त परद्रव्यों के भावों से पिन रूप से उपासित होता हुआ उसका अर्थ होता है यहाँ के आत्मा में जितना भेद विकार आदि है वो संसार है क्लेश है दुख है ये अशुद्ध नहीं का विषय अपनी पर्याय में है तो उससे तो संसार में दुख भोगना पड़ता है चार गति के निगोद आदि में तो जब परद्रव्य से छूटकर तो यहाँ आया देखो स्वयं परद्रव्य से जब बस ऐसा किया है जा रहे हैं एम नहीं कहा कि वो कर्म जब मन पड़े प्यारे और तेरे काल लब्धि पाके प्यारे वो तो तेरा पुरुषार्थ यहां लग जाए तो काल लब्धि पाक गई है समझ में आया है तो काल लब्धि पर काल लब्धि को उसका लक्ष्य नहीं करना है उसको आत्मा का लक्ष्य करना है समझ में आया किसने चंदी हाँ फिर वक्त बहुत हो गया हो जो जब एक शब्द पढ़ा है स्वयं देखो स्वयं ऐसा लिया है अपने से परद्रव्य से भिन्न होता है अपन स्वयं परद्रव्य भिन्न होता है अपना पुरुषार्थ है परद्रव्य का लक्ष्य जो अनादि का है उससे जो अशुद्धता उत्पन्न होती है वो क्लेश है दुख भोगता है तो दुख भोगना का छोड़ना हो परद्रव्य का लक्ष्य स्वयं छोड़ता है
बराबर
समझ में आया जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है तब क्लेश का स्वामी छूट गया तो क्लेश भी छूट जाता है राग से रहित न्यायिक भाव का दृष्टि हुई तो जो राग आदि है उसका स्वामीपना छूट गया पीछे स्वरूप की स्थिरता करके वो भी क्लेश छूट गया तो क्लेश छूटने से सुखी होता क्लेश दूर होता है इस प्रकार दुख मिटाने के लिए राजा जी बोले आ कारण इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान है शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान है पर्याय का उपदेश गौण करना है क्योंकि उससे तो क्लेश भोगते हैं समझ में आया पुस्तक है कि नहीं सभी पास है उसका अर्थ होता है शब्द का है शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान भगवान तो तेरा शुद्ध भगवान चिदानंद स्वरूप है उसकी दृष्टि कर तेरा मिथ्यात का क्लेश नाश हो जाएगा और उसमें स्थिरता कर अस्थिरता का क्लेश नाश हो जाएगा वो सिवाय दूसरा कोई उपाय है नहीं समझ में आया कौन गए ये तो आई जो ने परिदृश्य लग छोड़ना उपदेश का भी लग छोड़ना ऐसा एक नहीं हो परिदृश्य दिन होता है तो परिदृश्य में क्या रहा शब्द भी परिद्रव्या कर्म भी परिद्रव्या राग भी करे कर परिद्रव्य उसको लग छोड़कर स्वभाव में आना अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके फिर होना वही उसका कर्तव्य दर्शन निकारित रहे ज्ञान तो हुआ साथ में समझ में आया मूल चीज का पत्ता नहीं ऊपर पांदड़ा तोड़े पांदड़ा तोड़े समझते पत्ता वो मूल तो ऐसा नैसा साझा ऊपर से आंबली होती है ना अम्बली क्या कहते हैं आंबली इमली कितना पान बहुत तोड़ डाले सुखाई जाएगा क्या सुखाई जाएगा मूल आ जाए सब पांगरी जाएगा हमारी पांगरी भाषा कहते हैं फलवित होता है दो मास में फलवित हो जाएगा
आज कल हो गया
सर अंकुर तो उगे बे महीना में भी नहीं थी जिसका मूल काट दिया ऐसा करोड़ोपन्न हो दो मास में तो 15 दिन में सूख जाएगा ऐसे जिसने मिथ्यात रूपी मूल संसार का कट दिया पीछे चारित्र का दोष थोड़ा राग विषादी थोड़ा रहा वो सूख जाएगा सुखाई जाएगा पक्का पर राग मंद करने का प्रयत्न करते 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 अनंत काल भी समझ में आया पर मूल कटिया नहीं तो संसार सुख्या समझ में आया कहते हैं देखो जयचंद पंडित है उसमें से चालती भाषा में शब्द आते हैं कोई हम सहज समझ जाए ऐसी भाषा की शुद्ध नहीं का उद्देश्य प्रधान है अशुद्ध नहीं को असत्या कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति या वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है ऐसा नहीं समझना कि सत्या का पुण्य पाप दयादान व्रत को है ही नहीं एम नहीं समझना है ऐसा नहीं समझना कि असत्यात कहने से यह समझ न समझना आकाश के फूल जम है ही नहीं आत्मा की पर्याय में विकार है ही नहीं ऐसा नहीं समझना समझ में आया ओ, कितने परखे से बात करते हैं एकांत वेदांत न हो जाए एकांत राग का आश्रय न कर ले शुद्ध का आश्रय कर ले राग लक्ष्मा रखे समझ में आया वो दरकार किया नो न समझ में आवे ऐसी चीज नहीं है वो तो अंतर्मूर्त में कहते हैं प्रमाण साधो कहते हैं अंतर्मूर्त में अनुभव हो सकते इतनी ताकत उसमें अंतर्मूर्त में केवल ले सकते हैं अंतर्मूर्त में तो केवल ले सकते हैं अनादि निगोद का जीव 8 वर्ष मनुष्य होकर केवल पान कर अनादि शान निगोद ने शादी अनुसिद बीच में 8 वर्ष मनुष्य का
बराबर
समझ में आया अनादि शान निगोद निगोद से निकला 8 वर्ष मनुष्य आज या सुना सुन के 8 पावर था चांदर तवाव में पानी बहुत भरा हो और कुछ 1 लीटर कर इतनी थोड़ी रड़ाट पानी निकल करके ऐसे भगवान आत्मा में आनंद आदि छलो छल भरा है पूरा ऐसे 8 वर्ष में एकाकार होकर केवल काम कर मोक्ष जाते हैं शादी अनंत सीध अनादि निगोद बीच में 8 वर्ष
बराबर
इतनी ताकत आत्मा में है कहते कोई प्रश्न क्या था ना सेठ है दालचंद जी सेठ कहा प्रश्न क्या था ना कि भाई निगोद में से निकला इसमें क्या प्रसाद किया उसमें क्या पूछा तो राग मंद है वो साहब यहाँ आकर पूछताछ किया उससे बाहर निकला तो मोक्ष में कारण हुआ ऐसा है नहीं तो राग की मनता हुआ मनुष्य हुआ बस इतनी बात है उसमें कुछ नहीं तो भव्य भी होते हैं मनुष्य अभी है कि नहीं वो भी मुनिपना पालते हैं भाई क्रिया का नवमी ग्रीत का ऐसी क्रिया क्या उसमें क्या हुआ ओ आत्मा निकला क्या से पीछे अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान समझ में आया वो आती एक बात नहीं भरत चक्रवर्ती का पुत्र नहीं आते वो कितना है कुछ 10,000 का क्या वो पुत्र है नहीं है भरत का મૂલાનો ભાવ થઈને કેટલા વાળા 10,000 કે કેટલા, એ ખાલી નિગુણ નથી, 10,000 નીકળે ને બોલતા નથી. હે કેટલા 10,000, 10,000 લો કે 10,000, હા જયસંગ્રમાં 10,000 10,000 રાજા કા પુત્ર હો વ્રત ના બોલે નહી ભાષા નહી ભગવાન ભરત કો એસા હો કા ભાષા કે બોલતે હમરે ભાઈ આઈ રાજકુમાર તરીકે પુણ્યવંત હૈ દેખો તો મહાચકા તેજ હૈ આ બોલતે કે બોલે નહી પહેલે ભાષા નહી દરસંગ્રમ હૈ ભગવાન પાસે ગઈ ભરત ને પુત્ર ભી સબ સમોષણ મેં પ્રશ્ન કે ભરતે પ્રભુ આ શું હમરે ઘરે આયેગા ઓહો મહાપુણ્ય પ્રાણ બોલતે નહીં પાછા ભગવાન કહેતે કભી બોલેગા બોલ્યા તો એ બોલ્યા ભગવાન દીખા દો પહેલે પહેલે બોલ્યા જિંદગી મેં પહેલા દરસંગ મેં પાસે ભરત પૂછતે પ્રભુ કો પ્રભુ હમરે ઘરે આયે હમ ચક્રવર્તી ઇતના 10,000 પુત્ર રાજકુમાર મણિ રતન ની પુત્રી દીખતે હમ દેખા કોઈ થોડા નહીં હૈ મૂર્ખ નહીં હૈ બોલતે નહીં ક્યાં ભરત દીવધન માં આયા નહોતો અભી બોલેગા ઉઠકર 10,000 પ્રભુ હમ સંસાર સે દુખી હૈ દીક્ષિત બોલ બોલે દીક્ષિત હો ગયા કે મોક્ષ ચલે ગયા સમજ મેં આયા ભગવાન આત્મા કી તાકાત પડી ગઈ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ વિશ્વાસ નહીં ઉસકો વિશ્વાસ નહીં ત્યાં કહાં સે કેવો જ્ઞાન આયેગા ને કહાં સે ચીજ પદ હોગા ભગવાન તેરી પાસ મેં સબ પરાય હૈ એસા દેખો કે છે કે વસ્તુ કા અશુદ્ધતા હૈ પણ શુદ્ધતા પૂર્ણ પડી હૈ ઉસકા ભાન કરકે અશુદ્ધતા કા નાશ કરને કો શુદ્ધ નહીં કા ઉપદેશ દેને મેં આયા હૈ એસા સર્વથા શબ્દ ક્યાં પડે આકાશ ફૂલતી ભાંતિ વો વસ્તુ ધર્મ સર્વથા હિ નહીં હૈ એકાંત નહીં ગ્રહ મેં નહીં સર્વથા નહીં ક્યુ કહા ગ્રહ મેં અશુદ્ધતા નહીં પર્યાય મેં અશુદ્ધતા હૈ કથનચિત અશુદ્ધતા નહીં કિસમાં હૈ ગ્રહ મેં નહીં પર્યાય મેં હૈ અપને કારણ સે હૈ એસા સર્વથા એકાંત સમજને સે મિથ્યાત હોતા હૈ દેખો મિથ્યાત કા દ્રઢ હોતા હૈ રાગ દ્વેષ અપની પર્યાય મેં હૈ અપના સત્વ મેં હૈ અને જ્યાં શુદ્ધ નહીં કા ઉપદેશ સત્યાર્થ કરના ઉસકો અસત્યાર્થ કહા બિલકુલ અસત્યાર્થ માન લે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હો જાતા હૈ સમજ મેં આયા ક્યા હમારા વિકાર ફિકાર ક્યા તો કર્મ કરે કર્મ કરે કમારે ક્યા હૈ મૂડ હૈ મરી જાયેગા શાસ્ત્રમાં લિખા નહીં એસા બડા જી કા ક્યા ગુમત સારે પંડિત જી ઇતના ચાર ભાગ હૈ બરા અક્ષસ હૈ ઇતના આતા ગુમત સાર ચાર ભાગ પાંચ ભાગ આપ બરા અક્ષસ લિખા ક્યા લિખા હૈ વો તો નિમિત્ત બતાયા હૈ કે જબ રાગ દ્વેષ હોય તો 40 કર્મો કા ઉદય હૈ ઇતના બતાયા હૈ પણ ક્યા ઉદય મેં રાગ દ્વેષ હુઆ હૈ જડ કા ઉદય મેં હુઆ હૈ જડ કા ઉદય કી સત્તા જડ કી હૈ ઉદય કી પર્યાય જડ કી હૈ અને રાગ દ્વેષ ચૈતન્ય કા આભાસ હૈ વિકાર હૈ કે ઉસમે હુઆ હૈ કિશન ચંદ જી હૈ કરા દેતે હૈ હા ઠીક છે ક્યા વા કઈ સીટિયા સુખા હૈ મંત્ર હૈ દોષ અપના લગાને ને દૂસરો કા કર્મ ઉપર તુમ તો મંત્ર રહેને ચાહતે હો એસા લિખા હો કેસરી સિંહ જી ટોટલ મત લિખા હૈ તુમ તો મંત્ર રહેને ચાહતે હો ઓર તુમ્હારા દોષ કર્મ ઉપર નાચતે હો મરી જાયેગા જીના આજ્ઞા માને તેસી અનિતિ સંભવે નહીં સમજ આયા હૈ કે નહીં ક્યાં હૈ કિતને પાને પણ
વસ્તુ નિર્ણય કરવામાં કાંઈ કર્મ કા તો દોષ હૈ નહીં
तेरा दोष है, क्योंकि कोई निर्णय करना क्या करे, कर्म है निर्णय करा नहीं देते हैं, निर्णय करने का भाव कर्म निर्णय करा देते हैं नहीं, तो वो दोष तो तेरा ही है, तू पोते तो मंत्र वाली से है। कृष्ण जी सेठ किसको कहना, हाँ सेठ किसको कहना, मतलब क्यों न किया अपने सेठ क्या है, अपना स्वरूप का साधन समझे तो सेठ, बाकी सब अनुचर सब भिखारी है। सेठिया दीपचंद सेठिया कहीं भक्ति का उसमें आया ना दिया था, उसमें ऐसा है दो ठिकाने, अपना अपना स्वरूप संभाले सो सेठ, अपना स्वरूप संभाले सो सेठ, बाकी सब अनुचर भिखारी है। केसरी चंद जी यह शब्द है तो पुस्तक नहीं एक के नहीं मतलब है ना, तीन तो सब है रखते हैं, पढ़ाया कितना भाव आया वो हमारा ना है वो। गुणी जन संभाले सोई छे सेठ, अने तो अनुचर जान जो मारा ज्ञान। और सेठिया का लड़का का लड़का गुजर गए थे, छोटा मर्दा पड़ा था, तो वो मर्दा की माँ उसकी उसका लड़का थी स्त्री, तो सेठे कहा सेठिया है क्यों क्यों रोना है तुम्हारे, लड़का गुजर गया ग्रस्त घर बड़ा बिल्डिंग रोना है ना पिताजी, बहुत यहाँ घर में तीस मानस है बहुत, पिताजी हम कि हम कहते हैं गाओ बोलो, मुर्दा पड़े आए वो गाया समझ आया, जो पहले से वो आए गुणी जन बंधु श्री हरिहंसी, पाऊं तो शांति जीव में जी मारा। अब भाई रोटी है कि नहीं, मारा दीकरो मारो दीकरो नहीं करता मरे तरह के, मारो दीकरो मारा पेट नो मारा पेट भाई रोवे बो मरे ठीक मरे ना मारा पेट, अरे तारा पेट क्या आता, पेट तो दूर नो है दूर मर जाती आई तो आए तो कहते हैं पाऊं तो जीव शांति जीव मारा ज्ञान, या गुणी जन संभाले सोई छे सेठ। ये छोड़ी कन्या और लड़का की माता बोलती थी और सब घर से घर से बताया, सब क्या क्या होते हैं क्या, सब बोले गायन जी से रोना क्या है, वो तो स्थिति पूरी हो गई चले गया क्या है, देव की स्थिति कोई कुलता सकते हैं तीन काल में इंद्र नरेंद्र, कोई क्या करना है फिर रोना है। गुणी जन संभाले सोई सेठ, अन तो अनुचर जान जो जी मारा ज्ञान, अन तो अनुचर जान जो गुणी जन सुख सुख करे जो विवाद, आत्म सुख जीतियो जी मारा ज्ञान। आई श्री नु गायन बुध आपको मोटू से बस बीजे थे एम यहाँ कैसे देखो, बिना बिना माने तो ऐसी अनिति समझे ना, विकार कर्म कराते हैं साधु निकालते हैं तेरे विषय कसा और बनाना है, माके ऐसा झूठ बोलते हैं लिखा है, तेरे विषय का शायर उभरना है तो झूठ बोलते हैं, कर्म हमारे को दुख कराते हैं, दुष्ट तुम करते हो उन पर ऊपर नागते हो, ऐसी अनिति जैन आज्ञा में जैन आज्ञा मानते ऐसे समझे तो अशुद्ध अशुद्ध तो अपनी पर्याय में है, समझ में आया, उसको छोड़ाने को शुद्ध का उपदेश पर अशुद्धता नहीं है ऐसा कहने का उपदेश है नहीं विशेष आएगा।